पाठ 14 अध्याय 11। हमने पिछली बार इस प्रस्ताव के साथ समाप्त किया था कि इब्रानी आहार नियमों जो उन्हें माउंट सिनाई पर यहोवा द्वारा दिए गए थे को समझने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि ऐसा करने में परमेश्वर ने आहार को सीधे पवित्रता और शुद्धता के केंद्र में रखा है, जैसा कि वह इसे परिभाषित करता है। आदम और हव्वा के समय से ही भोजन एक प्रमुख मुद्दा था। वास्तव में हम पाते हैं कि महान जलप्रलय के बाद ही परमेश्वर ने मांस के लिए जानवरों को मारने की अनुमति दी थी। निश्चित रूप से यहूदी संतों और रब्बियों ने आहार संबंधी नियमों को इतनी जटिलता तक विस्तारित कर दिया है कि कभी कभी यह समझना कठिन हो जाता है कि भोजन के बारे में तोरह में ईश्वर के नियम सीमित और बुनियादी थे। लेकिन भोजन पर चर्चा करने से पहले आइए हम पवित्रता और शुद्धता तथा इनके विपरीतार्थकों के बारे में बात करें। पवित्र सामान्य का विपरीत है, जैसे कि स्वच्छ अशुद्ध का विपरीत है। सामान्य का मतलब वही है जो वह कहता है। सामान्य का न तो कोई विशेष मूल्य है और न ही कोई स्थान। यह विशिष्ट और आम है, इसे अलग नहीं रखा जाता है, और यह शब्द सबसे बड़े समूह पर लागू होता है। यानी सामान्य का मतलब है कि इसके विपरीत की तुलना में इसमें अधिक है। दूसरी ओर पवित्र सर्वोच्च स्थान रखता है और सबसे बड़ा मूल्य रखता है। पवित्र का अर्थ है कुछ ऐसा जो दुर्लभ, असामान्य, अलग रखा गया हो, और बाइबल और वर्तमान भौतिक दुनिया के संदर्भ में पवित्र एक अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है जिसे परमेश्वर की सेवा के लिए अलग रखा गया है। बहुत कम और कीमती कुछ ही पवित्र हैं। लगभग सब कुछ सामान्य है, इसलिए जो कुछ भी आम है वह पवित्र नहीं है। कुछ एक ही समय में पवित्र और आम नहीं हो सकता, न ही कुछ एक ही समय में साफ और अशुद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए, यहोवा ने इसराइल को पवित्र और बाकी दुनिया को आम माना। इसराइल कुछ हद तक आम और कुछ हद तक पवित्र नहीं था। वास्तव में कुछ भी पवित्र और आम का संयोजन नहीं हो सकता। यह कोई दर्शन या आदर्श नहीं है, यह एक कठोर, तेज, मौलिक, स्वयंसिद्ध सिद्धांत है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। आदम और हव्वा के पतन के बाद से इस वर्तमान दुनिया में सब कुछ आम के रूप में शुरू होता है। आप, मैं, पौधे, जानवर, मिट्टी, पानी, सब कुछ। नकारात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी जो अपनी प्राकृतिक अवस्था में है पवित्र नहीं है। क्या कोई ऐसी चीज जो आम के रूप में शुरू होती है पवित्र हो सकती है? धन्यवाद यीशुआ, हाँ। कोई आम चीज जैसे आप और मैं कैसे पवित्र हो जाती है? इसे हमें पवित्र होना चाहिए, यानी ब्रह्मांड के निर्माता को हमें पवित्र घोषित करना चाहिए। एक बार जब कोई चीज पवित्र हो जाती है तो वह आम नहीं रह जाती, क्योंकि अब वह पवित्र है। एक सामान्य चीज थोड़ी पवित्रता के साथ शुरू नहीं होती है और फिर समय के साथ, प्रयास या योग्यता के साथ पवित्र और पवित्र होती जाती है। चीजें और लोग या तो पवित्र हैं या पवित्र नहीं हैं। एक बार जब कोई सामान्य चीज शुद्ध हो जाती है और पवित्र हो जाती है तो वह अपनी सामान्यता की स्थिति को पीछे छोड़ देती है। तोरह के उस सिद्धांत पर एक पल के लिए विचार करें। विश्वासियों के रूप में आप और मुझे पवित्र कहा जाता है ना? जिस क्षण हम यीशु हमाशियाज पर अपना भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हमें पवित्र घोषित कर देता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करती है और इस प्रकार हम सामान्य को त्याग देते हैं और पवित्र बन जाते हैं। हमारे पश्चिमी चर्च का ये कहना है कि हम पुराने स्व को पीछे छोड़ देते हैं और मसीह में एक नए व्यक्ति बन जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन यह प्राचीन तोरह की अवधारणा को फिर से व्यक्त करने का एक आधुनिक गैर यहूदी तरीका है, जिसमें परमेश्वर के निर्णय पर आम लोगों को पवित्र माना जाता है। हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि इसराइलियों की तरह एक बार जब यहोवा आपको पवित्र घोषित कर देता है तो आप आम नहीं रह जाते, चाहे आप खुद को कैसे भी देखें। एक आस्तिक के रूप में आप उसकी नजर में 100% पवित्र हैं, गैर आस्तिक 100% आम हैं। इस पर विश्वास करें, इस पर भरोसा करें और इसे जिए। आइए इस प्याज को एक और परत से छीलें। आम चीजों को दो अलग अलग और विशिष्ट समूहों में विभाजित किया जा सकता है, स्वच्छ और अशुद्ध। केवल स्वच्छ सामान्य चीजें ही पवित्र बनने के योग्य हैं, यानी केवल सामान्य चीजें जो स्वच्छ भी हैं पवित्र बन सकती हैं, अशुद्ध सामान्य चीजें पवित्र नहीं हो सकती। लैव्य व्यवस्था अध्याय 11 से 16 में हम परमेश्वर की सूची पाएंगे कि कौन सी चीजें स्वच्छ सामान्य चीजों को दर्शाती हैं और कौन सी चीजें अशुद्ध सामान्य चीजों को दर्शाती हैं। आधुनिक चर्च सिद्धांत चाहे जो भी कहें, वास्तविकता यह है कि स्वच्छ और अशुद्ध, पवित्र और सामान्य क्या है, यह नए नियम में परिभाषित नहीं किया गया है। इसके लिए हमें तोरह की ओर मुड़ना होगा। साफ चीजें गंदी चीजों के संपर्क में आने से प्रदूषित हो सकती हैं, लेकिन गंदी चीजें किसी साफ चीज के संपर्क में आने से साफ नहीं हो सकती। इसलिए यह एक तरफा रास्ता है। जब कोई साफ चीज किसी गंदी चीज के संपर्क में आती है तो इसका नतीजा हमेशा यही होता है कि दोनों चीजें अब अशुद्ध हो जाती हैं। पवित्र के साथ व्यवहार करते समय भी हमारी यही स्थिति होती है। पवित्र के आम के संपर्क में आने का परिणाम यह होता है कि पवित्र अपवित्र हो जाता है। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता कि पवित्रता को छूने वाली आम चीज को सिर्फ संपर्क के जरिए पवित्र बनने दिया जाए। ऐसा कहा जाता है कि पुराने नियम में कुछ घटनाएं दिखाती हैं कि जबकि सैद्धांतिक रूप से यह संभव हो सकता है कि पवित्रता किसी आम या अशुद्ध चीज में सिर्फ संपर्क से फैल जाए, लेकिन प्रभु उस चीज को नष्ट करके इस प्रक्रिया को बाधित करते हैं जिसने पवित्र को छुआ है। इस प्रकार वास्तव में पूरा प्रश्न बेमानी हो जाता है। यह उन एकतरफा रास्तों में से एक है। मेरे साथ बने रहिए। मुझे एहसास है कि पश्चिमी विश्वासियों के लिए यह बहुत ही गहन और तकनीकी है, क्योंकि हमें इन बाइबल की वास्तविकताओं से कभी परिचित नहीं कराया गया है। लेकिन जब हमने पहली बार विश्वास किया था तो हमें परिचित होना चाहिए था। मैं आपको केवल शब्दों का उपयोग करके जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं वह कुछ लगभग अवर्णनीय आध्यात्मिक सिद्धांत हैं जिन्हें यहोवा ने पूरे ब्रह्मांड में अंतर्निहित किया है। सब कुछ इन सिद्धांतों के अनुसार संचालित होता है। कुछ भी छूट नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। अगर हम ये समझने जा रहे हैं यहाँ तक कि दूर से भी कि मोक्ष वास्तव में क्या है और ये इतना आवश्यक क्यों है, अगर हम ये समझने जा रहे हैं कि ईश्वर हमसे जिस तरह की अपेक्षा करता है उस तरह से कैसे जीना है, तो ये मूल सिद्धांत हैं जिन्हें हमें अवश्य ही आत्मसात करना चाहिए। और मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि अधिकांश ईसाई अपने पूरे चर्च जीवन में कभी भी इन सिद्धांतों की व्याख्या नहीं पाएंगे। लेकिन कोई भी 6 या 7 साल का यहूदी बच्चा जो एक सामान्य यहूदी स्कूल में गया है उन्हें दिल से जानता होगा, भले ही वे उनके महत्व को पूरी तरह से न समझें। तो कुछ और स्पष्टीकरण पर वापस आते हैं। जबकि इस दुनिया में सब कुछ सामान्य रूप से शुरू होता है, अधिकांश चीजें स्वच्छ रूप से भी शुरू होती हैं। स्वच्छ और सामान्य आम तौर पर, लेकिन पूरी तरह से नहीं, पतित दुनिया की वर्तमान प्राकृतिक स्थिति है। इसलिए हम जो देखते हैं वह यह है कि एक छोर पर पवित्र है और दूसरे छोर पर अशुद्ध है। इन दोनों के बीच में एक तरह से मध्य भूमि के रूप में सामान्य और स्वच्छ स्थित है। मध्य भूमि स्वच्छ दो दिशाओं में से एक में खींची जा सकती है। इसे पवित्रीकरण के माध्यम से पवित्र बनाया जा सकता है या इसे अपवित्रता के माध्यम से अशुद्ध बनाया जा सकता है। किसी भी पवित्र वस्तु को अशुद्ध वस्तु के संपर्क में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसका परिणाम यह होता है कि पवित्र वस्तु अस्थाई रूप से अपवित्र हो जाती है और अशुद्ध वस्तु नष्ट हो जाती है। तो यहां आपके लिए याद रखने का सबसे आसान नियम है जो मैंने अभी बताया है, सामान्य और स्वच्छ अधिकांश चीजों की प्राकृतिक और प्रारंभिक अवस्था है जिसमें मानव जाति भी शामिल है। सामान्य और स्वच्छ चीजों को पवित्र बनाया जा सकता है या सामान्य और स्वच्छ चीजों को अशुद्ध बनाया जा सकता है। अब हम तोरह में स्वच्छ और शुद्ध शब्दों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल सुनेंगे। इनका मतलब एक ही है। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए स्वच्छ और शुद्ध समानार्थी हैं। पवित्रता के इन बुनियादी नियमों का पालन करने और ये समझने के बाद कि ये नियम पूरे ब्रह्मांड के मूल ढांचे को रेखांकित करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, तब हम ये देखना शुरू कर सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने पवित्र स्व और आम आदमी के बीच अवरोध क्यों खड़े किए हैं। आदम और हव्वा अद्वितीय थे क्योंकि उन्हें एक पवित्र अवस्था में बनाया गया था और इसलिए वे पवित्र यहोवा के साथ लगभग असीमित संपर्क रख सकते थे। फिर भी विद्रोह करने के बाद वे पवित्र नहीं रहे, वे अब आम हो गए थे। इस तरह वे उसकी उपस्थिति के साथ संपर्क नहीं रख सकते थे। यही कारण है कि प्रभु को उन्हें अपने सांसारिक निवास स्थान अदन के बगीचे से बाहर रखना पड़ा। ये आदम और हव्वा पर दंड का मामला कम और परमेश्वर की पवित्रता और आदम और हव्वा के जीवन की सुरक्षा का मामला अधिक था कि प्रभु और उनकी दो मानवीय रचनाओं के बीच एक अवरोध खड़ा किया जाए। और यही वह स्थिति है जिसमें मानव जाति वर्तमान में खुद को पाती है, बाहर से अंदर की ओर देखते हुए। परमेश्वर की पवित्रता की रक्षा अवश्य की जानी चाहिए। परमेश्वर खुद को अपवित्र नहीं होने देगा, वह हर कीमत पर अपनी पवित्रता की रक्षा करेगा। केवल पवित्र चीज ही पवित्र परमेश्वर के संपर्क में आ सकती है। बस क्या आप इसे देखते हैं? अब यहां दूसरा नियम है जो तोरह द्वारा सबसे स्पष्ट रूप से बनाया गया है और सृष्टि के पहले दिन से प्रभावी था, और नियम को नए नियम में बस दोहराया गया है। नियम यह है कि कोई भी आम चीज पवित्र तभी बन सकती है जब वह ईश्वर की कृपा से हो। आम के पवित्र बनने की इस प्रक्रिया या घटना के लिए चर्च का शब्द पवित्रीकरण है, या अधिक इंजीलवादियों के लिए इसे बचाया जाना कहा जाता है। मूसा के युग में और मसीह की मृत्यु तक ईश्वर ने उन लोगों पर अपनी कृपा प्रदान की जिन्हें उसने बुलाया था, और जिसे उसने बुलाया था वह इज़राइल था। ईश्वर ने इज़राइल पर अपनी कृपा इस शर्त पर प्रदान की कि वे तोरह के नियमों और अनुष्ठानों का पालन करें जिन्हें उसने निर्धारित किया था। आज ईश्वर का अनुग्रह सभी मनुष्यों के लिए उपलब्ध है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे केवल यीशु हामाशियाच, यीशु मसीह, ईश्वर के पुत्र के पूर्ण कार्य पर भरोसा करें। इसे अनुग्रह भी कहा जाता है क्योंकि मनुष्य कुछ भी करके इस अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन किसी भी युग में, मूसा या मसीह के युग में, पवित्रता ईश्वर के अनुग्रह के माध्यम से प्रदान की गई थी। देखिए, आधुनिक लोग मोक्ष के अंतिम लक्ष्य को क्षमा किए जाने, पाप से शुद्ध किए जाने के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तविक अंतिम लक्ष्य पवित्र घोषित किया जाना है ताकि हम परम पवित्रता की उपस्थिति में रह सकें। पवित्र ईश्वर यहोवा, जो कि वह हमेशा से चाहता था, उद्धार, पापों की क्षमा हमारे पवित्र बनने का साधन है। इसलिए एक व्यक्ति जो सामान्य रूप से जन्म लेता है, जो कि सभी मनुष्य हैं, और जो अपने पूरे जीवन में सामान्य रहता है और सामान्य रूप से मरता है, कभी भी पवित्र नहीं बन पाता है, और इसलिए वह अनंत काल तक पवित्रता की उपस्थिति में कभी नहीं आ सकता है। लेकिन एक व्यक्ति जो सामान्य रूप से जन्म लेता है, फिर से ये सभी मानव जाति है, लेकिन यीशु पर भरोसा करके परमेश्वर द्वारा पवित्र घोषित किया जाता है, एक पवित्र अवस्था में अपना जीवन जीता है, एक पवित्र अवस्था में मरता है और बना रहता है अनंत काल तक पवित्रता की उपस्थिति में। पवित्रता, शुद्धता और स्वच्छता वे मूलभूत मुद्दे हैं जिनके बारे में सभी विश्वासियों को हर समय सोचना चाहिए। बाइबल के समय के इब्रानियों को शुद्धता और स्वच्छता के मुद्दों पर अच्छे कारण से जुनून था, उनका पवित्र होने का दर्जा खो सकता था। देखिए कि एक सामान्य इब्रानी आध्यात्मिक सीढ़ी पर ऊपर नीचे चढ़ता था, जिसमें सबसे ऊपर पवित्रता और सबसे नीचे अशुद्धता थी। अगर उन्होंने कानून तोड़ा, उन्होंने पाप किया, उन्होंने मूसा द्वारा दी गई आज्ञाओं में से किसी एक का उल्लंघन किया, तो उनकी पवित्रता को निलंबित कर दिया गया, ऐसा कहा जाता है। तोरह के आदेशों की अवज्ञा ने उन्हें उनकी पूर्व पवित्र स्थिति से नीचे एक सामान्य स्थिति में गिरा दिया। लेकिन इससे भी बदतर, वे ऐसे कार्य कर सकते थे जो उन्हें अशुद्ध बनाते थे। मैं फिर से कहना चाहता हूं, तोरह के ज्यादातर आदेशों की अवज्ञा करने से वे अस्थाई तौर पर सामान्य, लेकिन आम तौर पर स्वच्छ अवस्था में पहुंच जाते थे। स्वच्छ और सामान्य, लेकिन अब पवित्र नहीं। फिर भी ऐसे दूसरे काम थे जो वे कर सकते थे, जैसे कि किसी मृत शरीर को छूना, जिससे न केवल वे सामान्य अवस्था में पहुंच जाते थे बल्कि अशुद्ध भी हो जाते थे, अशुद्ध और सामान्य। इसलिए सबसे पहले एक अशुद्ध व्यक्ति को फिर से शुद्ध होना पड़ता था, उन्हें वापस उस स्थिति में आना पड़ता था जिसे हम तटस्थ अवस्था कह सकते हैं, जो सामान्य और स्वच्छ होती है। यही अनुष्ठान शुद्धता कानूनों का उद्देश्य है। और याद रखें कि एक अशुद्ध व्यक्ति के फिर से अनुष्ठानिक रूप से शुद्ध होने की प्रक्रिया का एक हिस्सा मिखवा अनुष्ठान स्नान में स्नान करना था। एक बार जब कोई व्यक्ति अशुद्ध हो जाता था किसी भी कारण से, उसे फिर से शुद्ध कर दिया जाता था, तब फिर वे बलि प्रथा में जा सकते थे और पवित्र के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए उचित बलिदान कर सकते थे। इसलिए अनुष्ठान शुद्धता प्रावधान एक व्यक्ति को अशुद्ध अवस्था से वापस शुद्ध अवस्था में लाने के लिए थे। बलि प्रथा एक व्यक्ति को स्वच्छ और सामान्य अवस्था में स्वीकार्य पवित्रता की स्थिति में वापस लाने के लिए थी। पवित्र स्थिति को पुनः प्राप्त करने की इस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द प्रायश्चित है, जिसे रोक दिया गया था। एक व्यक्ति जो सामान्य और शुद्ध है, उसे पवित्रता की स्थिति में वापस लाने के लिए एक विशिष्ट पशु बलि के रूप में प्रायश्चित किया जाना था। मैं पवित्रता की स्थिति में वापस आने को दोहराता रहता हूं, क्योंकि एक व्यक्ति जिसे कभी भी पवित्र परमेश्वर द्वारा घोषित नहीं किया गया है, वह केवल शुद्धता और प्रायश्चित अनुष्ठान करके खुद को पवित्र नहीं बना सकता है। तो एक ठेठ इब्रानी इस लगातार चलती लिफ्ट पर था, पवित्रता के पैमाने पर ऊपर और नीचे। क्या यह कोई आश्चर्य की बात है कि संत पौलुस और अन्य तोरह का पालन करने वाले यहूदी, जो मसीह ने उनके लिए जो किया उसे समझते और स्वीकार करते थे, वे अपने यहूदी मित्रों को यह समझाने के लिए इतने उत्साहित थे? पवित्रता की सीढ़ी पर चढ़ने और उतरने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब एक दिन यहोवा की उपस्थिति में नहीं रहना पड़ेगा और अगले दिन उससे वंचित नहीं रहना पड़ेगा। मसीह के प्रायश्चित बलिदान ने विश्वासियों को पवित्रता की एक स्थायी अवस्था में पहुंचा दिया, जो फिर कभी सामान्य नहीं होगी। एक अंतिम टिप्पणी और हम अध्याय 11 पढ़ेंगे। रब्बियों, संतों और बाइबल विद्वानों द्वारा किए गए सभी महान खोजों में से प्राचीन या हाल के यहूदी या गैर यहूदी, कुछ विषय इतने चुनौतीपूर्ण रहे हैं कि पवित्रता शब्द के अंतर्निहित अर्थ को व्यापक रूप से पहचाना जा सके। वास्तव में परमेश्वर का इस शब्द से क्या अभिप्राय है, मूसा का इस शब्द से क्या अभिप्राय था, यहूदी और ईसाई दोनों ही यह समझते हैं कि पवित्रता का एक गुण अलगाव है, अर्थात यहोवा की सेवा के लिए कुछ या कोई व्यक्ति दूसरों से अलग है। फिर भी यह किसी तरह अधूरा और अपर्याप्त लगता है। लय व्यवस्था हमें दिखाती है कि इस सरल कथन से कहीं अधिक इसमें शामिल है। उदाहरण के लिए, पवित्रता की प्रकृति क्या है? पवित्रता अन्य सभी संभावित अवस्थाओं से किस प्रकार भिन्न है? पवित्रता की मुख्य विशेषता क्या है? सभी में से मुझे जो स्पष्टीकरण मिला है वह मेरे लिए सबसे बेहतर है, जो ईश्वर के वचन के लिए सबसे सही लगता है। आध्यात्मिक को भौतिक के साथ मिलाते हुए वह यह है, पवित्रता का मुख्य स्वभाव संपूर्णता और संपूर्णता है, कोई कमी नहीं अपूर्णता के बिना। अध्याय 11 पढ़ने के बाद हम पवित्रता और उसकी विशेषताओं पर और अधिक गौर करेंगे। लय व्यवस्था अध्याय 11 पूरा पढ़ें। पद 1 में हम पाते हैं कि यहोवा मूसा और हारून दोनों से संभवतः ऊंची आवाज में बात कर रहा है, और वह उनसे कहता है कि उन्हें इज़राइल को वह सिखाना है जो वह उनसे कहने वाला है। परमेश्वर का पहला महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि इज़राइल स्वतंत्र रूप से जीवित प्राणियों को खा सकता है। यह एक मील का पत्थर है। यह पहली बार है कि यहोवा ने ठीक ठीक सूची दी है कि कौन से जानवर उसके आशीर्वाद से खाए जा सकते हैं। ओह हाँ, मनुष्य लंबे समय से मांस खाते आ रहे थे, लेकिन इससे पहले कभी भी जानवरों की प्रजातियों पर सीमा नहीं थी, सिवाय जीवित प्राणी का खून न खाने की सीमा के। शुरुआत में जीवित प्राणियों जानवरों को मानव जाति का साथी होना था। पतन के बाद उन्हें मार दिया जाना था और यहोवा को बलि चढ़ाने के उद्देश्य से उनका इस्तेमाल किया जाना था, ताकि मानव जाति जानवरों के खून से अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने नूह को बताया कि जानवरों को कैसे मारना और खाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ जानवरों को स्वीकार्य और अन्य को वर्जित नहीं बताया। उत्पत्ति 9। एक परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, दो तुम्हारा डर और भय सब बनेले पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर रहने वाले सब जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा, वे सब तुम्हारे वश में कर दिए गए हैं। 3 सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसे मैंने पहले तुम्हें हरे पौधे दिए थे वैसे ही अब भी सब कुछ देता हूं। 4 केवल मांस समेत उसका प्राण अर्थात उसका लोहू तुम न खाना। अब लैव्य व्यवस्था 11 में प्रभु मनुष्यों को जीवित प्राणियों को खाने की अनुमति दे रहा था, लेकिन केवल कुछ ही प्रकार के। दिलचस्प बात यह है कि यीशु के पुनः आने के कुछ समय बाद भोजन के लिए पशुओं को अनुमति नहीं दी जाएगी। जीवित प्राणी के लिए इब्रानी शब्द हैया है, किसी भी प्रकार के जीवित प्राणी के लिए एक बहुत ही सामान्य शब्द, लेकिन पौधे के जीवन के लिए नहीं। और जीवित प्राणियों का पहला समूह जिसे मनुष्य मार सकता है और खा सकता है, इब्रानी में बेहेमाह है। बेहेमाह 2 विशेषताओं को दर्शाता है, वे भूमि के जानवर हैं, समुद्री जीवों या उड़ने वाले जानवरों के विपरीत, और ये ऐसे जानवर हैं जो वर्तमान में पालतू हैं या हो सकते हैं, जैसे मवेशी, भेड़ या बकरियां। हम देखेंगे कि यहोवा मनुष्यों को दिखाएगा कि वे पृथ्वी के 3 अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों को मार सकते हैं और खा सकते हैं, यानी 3 अलग अलग प्रकार के सांसारिक वातावरण, पानी, हवा और जमीन। इसका बहुत आध्यात्मिक अर्थ है जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बेहेमाह में से भूमि के वे जानवर जिन्हें इज़राइल स्वतंत्र रूप से मार सकता है और खा सकता है, उन्हें स्वच्छ घोषित किया जाता है। वे स्वच्छ क्यों हैं और अन्य क्यों नहीं हैं? फिर से हम अगले कुछ हफ्तों में इस मामले पर गहराई से चर्चा करेंगे। अभी के लिए प्राथमिक धारणा यह है कि वे स्वच्छ हैं क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें स्वच्छ होने के लिए चुना है। लेकिन इस पर ध्यान दें, जब तक इसराइल को प्रभु द्वारा चुना, विभाजित और अन्य सभी राष्ट्रों से अलग नहीं किया गया, तब तक पृथ्वी पर सभी लोग परमेश्वर की नजर में एक ही स्थिति के थे, सामान्य। एक बार परमेश्वर ने इसराइल को लिया और उन्हें अपने चुने हुए लोगों के रूप में अलग कर दिया, और उन्हें छुड़ाने के बाद अचानक दुनिया 2 अलग अलग समूहों में विभाजित हो गई, जिनकी स्थिति अलग अलग थी, वे जो पवित्र थे और बाकी सभी, या अधिक सटीक रूप से इज़राइल और बाकी सभी को गैर यहूदी कहा जाता है। अब जब उसने इज़राइल को पवित्र के रूप में अलग कर दिया है, तो वह जानवरों को शुद्ध और अशुद्ध में अलग करना शुरू कर देता है। कुछ भोजन और बलिदान के लिए उपयुक्त हैं और बाकी अनुपयुक्त हैं। यहोवा ने इज़राइल के लिए एक दृश्य साधन निर्धारित किया है, जिससे वह यह पहचान सके कि अनेक प्रकार के बेहेमाह में से किस प्रकार के बेहेमाह को वह भोजन के रूप में उपयोग करने के लिए स्वीकृत करता है। शारीरिक विशेषता क्रमांक 1 यह है कि स्वीकृत बेहेमाह का खुर फटा हुआ होना चाहिए। शारीरिक विशेषता क्रमांक 2 यह है कि उसे जुगाली करनी चाहिए। तो फटा हुआ खुर क्या है? मूल रूप से इसका मतलब है कि खुर इस तरह से विभाजित है कि किसी बिंदु पर यह 2 पूरी तरह से अलग भागों में अलग हो जाता है, जैसे 2 पैर की उंगलियां। जैसे कई जानवरों के खुर एक छोर पर विभाजित होते हैं, लेकिन वे 2 अलग अलग टुकड़ों में बनने के लिए पूरी तरह से अलग नहीं होते हैं, आगे और पीछे। इसलिए घोरों के खुर फटे हुए नहीं होते हैं और उन्हें खाने के लिए अयोग्य माना जाता है। बाइबल के अनुसार वे अशुद्ध हैं। आप गैर किसानों या पशुपालकों के लिए जुगाली करना थोड़ा घिनौना है, लेकिन आप शहरी लोगों के लिए मुझे इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है ताकि यह शब्द अच्छी तरह से समझा जा सके। मूल रूप से इसका मतलब है कि जानवर अपने भोजन को केवल आंशिक रूप से चबाता है, उसे निगलता है, और फिर बाद में जब उसे अधिक सुविधा होती है तो उसे वापस ऊपर लाता है और फिर से निगलने से पहले उसे कुछ और चबाता है। तकनीकी रूप से इस विशेषता वाले जानवरों को जुगाली करने वाले जानवर कहा जाता है, जिनके पेट में आमतौर पर 4 डिब्बे होते हैं। इसलिए जुगाली करना मूल रूप से एक वर्णन है कि किसी विशेष जानवर का पाचन तंत्र कैसे डिजाइन किया गया है। अब तक हमारे पास एक स्वच्छ और खाद्य बेहमाह की चार आवश्यक विशेषताएं हैं। एक, यह एक स्थलीय पशु है। दो, यह एक पालतू पशु है जंगली पशु के विपरीत। तीन, इसका खुर पूरी तरह से फटा हुआ होना चाहिए। और चार, यह जुगाली करने में सक्षम होना चाहिए। पद चार में यहोवा कुछ ऐसे सामान्य जानवरों के उदाहरण देता है जो उस युग में आम तौर पर भोजन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे लेकिन इसराइल के लिए वर्जित थे, और वह बताता है कि वे वर्जित क्यों हैं। उदाहरण के लिए, ऊंट जुगाली करता है लेकिन उसके खुर फटे नहीं होते। हायरैक्स भी जुगाली करता है लेकिन उसके खुर फटे नहीं होते, और सही कहें तो खुर तो बिल्कुल भी नहीं होते। खरगोश जुगाली करता है लेकिन उसके खुर फटे या दूसरे खुर नहीं होते। और अब शायद बाइबल में जानवरों की अशुद्धता का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक सुअर, उसके खुर फटे तो होते हैं लेकिन वह जुगाली नहीं करता। स्पष्ट रूप से कहें तो ये केवल अशुद्ध जानवर नहीं है, ये तोरह में इस्तेमाल किए गए उदाहरण मात्र हैं। शायद हमारे लिए इब्रानी शब्द सीखना भी अच्छा होगा जिसका अनुवाद अशुद्ध के रूप में किया गया है, क्योंकि हम तोरह में बार बार इसका सामना करेंगे। वह शब्द है तमई। आइए इस शब्द तमई अशुद्ध के बारे में बहुत स्पष्ट हो जाए। इसका स्वच्छता से कोई लेना देना नहीं है या यह मनुष्यों द्वारा स्वाभाविक रूप से खाया जा सकता है या नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक मामला है, क्योंकि यहोवा ने अपने अच्छे कारणों से आदेश द्वारा घोषित किया है कि कुछ जानवरों को उसके लोगों में से किसी एक द्वारा नहीं खाया जाना चाहिए। पद आठ हमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी देता है। यहोवा ने निर्देश दिया है कि अशुद्ध जानवरों को नहीं खाया जा सकता और न ही एक इजरायली को किसी मृत जानवर की लाश को छूना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कारणवश आप किसी मरे हुए जानवर पर ठोकर खाते हैं या उसे मारना पड़ता है किसी उद्देश्य के लिए, आप इसे छू भी नहीं सकते। हालांकि जैसा कि हम बाद के अध्यायों में जानेंगे, जीवित अशुद्ध जानवर को छूने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए एक खरगोश पालतू जानवर हो सकता है, या एक ऊंट की सवारी की जा सकती है, या एक इजरायली द्वारा बोझ ढोने वाले जानवर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं। आप बस इसे खा नहीं सकते या मृत जानवर को छू नहीं सकते। पद नौ में पौधों की धरती के जल क्षेत्र से जीवित प्राणियों के बारे में बताया गया है। समुद्री जीव ताजे या खारे पानी के और खाने के लिए स्वीकृत समुद्री जीव की सबसे स्पष्ट विशेषता यह है कि उसके पंख और तराजू दोनों होने चाहिए। इसलिए कोई भी समुद्री जीव जिसके पंख और तराजू दोनों हो, वह साफ है। साफ बाइबल का एक और महत्वपूर्ण शब्द इब्रानी में ताहोर है। तमई अशुद्ध है, ताहोर साफ है। अशुद्ध समुद्री जीव वे हैं जिन्हें बाइबल में झुंड कहा गया है। इब्रानी में झुंड का अनुवाद शरत है, और इसमें रेंगने के साथ साथ झुंड में रहने का भी विचार है। अब झुंड का क्या मतलब है, यह समझना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा लगता है कि यह अपने साथ अनियमितता का विचार लेकर आता है, कुछ ऐसा जो समूह में रहता है और कुछ ऐसा जो अप्रत्याशित रूप से इधर उधर भागता है। यह उन मछलियों को संदर्भित नहीं करता है जो झुंड में रहती हैं। अशुद्ध समुद्री जीव की मुख्य विशेषता यह है कि पानी में तैरने पंखों का उपयोग करके के बजाय यह या तो तल पर रेंगता है या सांप की तरह सरकता है। इसलिए उदाहरण के लिए शंख को तमई अशुद्ध माना जाता है। झींगे और केकड़े भी प्रतिबंधित हैं, जैसे कि ईल और समुद्री सांप। पद 10 में अशुद्ध जानवरों की एक तरह की सुपर श्रेणी पेश की गई है जिसे इब्रानी में शेकेट्स के रूप में वर्णित किया गया है। आमतौर पर शेकेट्स का अनुवाद घृणित या घृणित वस्तु के रूप में किया जाता है। यह ऐसी चीज है जिससे हर कीमत पर बचना चाहिए, जैसा कि हमने पाप को वर्गीकृत करते हुए देखा है। और फिर बलि के अनुष्ठानों में जानवरों के पदानुक्रम की आवश्यकता होती है, सबसे कम से लेकर सबसे मूल्यवान तक पाप की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए। सबसे कम गंभीर से लेकर सबसे अधिक तक हम देखते हैं कि अशुद्ध चीजों का भी कुछ प्रकार का वर्गीकरण होता है, जो कम अशुद्ध और अधिक अशुद्ध के आधार पर होता है। शब्द शेकेट्स, घृणित, घृणित, अशुद्ध चीज की सबसे गंभीर श्रेणी का वर्णन करने के लिए आरक्षित है। बाइबल को पढ़ते समय यह जानना एक अच्छी बात है, क्योंकि हम सभी शायद एक या दो आयतों के बारे में सोच सकते हैं जिसमें यहोवा किसी चीज को घृणित कहता है। घृणित वस्तु परमेश्वर की नजर में सबसे खराब प्रकार का पाप या अशुद्धता है। तुरह अब तेजी से उन जीवों की ओर बढ़ता है जो वायु क्षेत्र में रहते हैं, यानी उड़ने वाले जीव। और चूंकि उड़ने वाले जीवों की कई किस्में हैं, इसीलिए पहली श्रेणी सबसे स्पष्ट है, पक्षी। और दिलचस्प बात यह है कि पिछले अभ्यास से हटकर स्वच्छ और इसलिए खाद्य पक्षी की विशेषताओं का वर्णन करने के बजाय यह अशुद्ध की विशेषताओं का वर्णन करता है, इस विचार के साथ कि पक्षियों की अन्य सभी किस्मों को स्वच्छ माना जाना चाहिए और इसलिए एक स्वीकृत खाद्य स्रोत माना जाना चाहिए। इसलिए हमें उन पक्षियों की एक सूची मिलती है जिन्हें शेकेट्स माना जाता है, न केवल अशुद्ध बल्कि अत्यधिक अशुद्ध। एक घृणित चील, गिद्ध चील और बाज का नाम पहले लिया जाता है, उसके बाद कुछ प्रकार के उल्लू, पेलिकन और सारस, यहां तक कि एक चमगादड़ का भी नाम लिया जाता है। हाँ, मुझे पता है कि तकनीकी रूप से चमगादड़ पक्षी नहीं है, लेकिन परंपरा के अनुसार इब्रानी और अरब चमगादड़ों को पक्षी श्रेणी में मानते हैं। इन सभी पक्षियों की सामान्य विशेषता यह है कि वे या तो शिकारी पक्षी हैं जो अन्य जीवित प्राणियों को मारकर खाते हैं, या गिद्धों की तरह वे सरा हुआ मांस खाते हैं। हालांकि कृपया ध्यान दें कि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि अन्य जीवित प्राणियों को खाने का गुण इस सूची में शामिल पक्षियों को अशुद्ध बनाता है। मुर्गियों की तरह कुछ अन्य पक्षी कृतक सहित लगभग कुछ भी खा सकते हैं, और मुर्गियों को अशुद्ध नहीं माना जाता था। इसलिए हमें अशुद्ध पक्षियों की इस सूची में अशुद्ध होने का कारण बताने में थोड़ा सावधान रहना चाहिए, जबकि बाइबल हमें कोई विशेष कारण नहीं बताती है। इसके बाद पद 20 में हमें जीवित प्राणियों की एक और श्रेणी मिलती है जो वायुमंडल में निवास करती है, उड़ने वाले कीड़े। कोशेर खाद्य पदार्थों की सूची में कीड़े क्या कर रहे हैं या नहीं? इस युग के अधिकांश समाजों में कीड़े मकौड़े आहार का एक सामान्य और रोजमर्रा का हिस्सा थे, और इसलिए यहोवा ने इसराइलियों को बताया कि वे कौन से कीड़े खा सकते हैं। वह कीटों की एक व्यापक और व्यापक श्रेणी देकर ऐसा करता है जो घृणित हैं, शेकेट्स, और फिर नियम के अपवादों को सूचीबद्ध करता है जो स्वीकार्य, स्वच्छ, ताहोर होंगे। पंख वाले सभी कीट और जो झुंड में रहते हैं और जिनके चार पैर हैं, वे निषिद्ध हैं। चार प्रकार के टिड्डों या ग्रास हॉपर को छोड़कर इनमें क्या अलग है? उनके पैर जोरदार होते हैं, यानी उनके पैरों को झुकने और स्प्रिंगिंग एक्शन के साथ संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि वे कूद सकें या उछल सकें। अध्याय 11 से गुजरने के बाद पवित्रता और शुद्धता पर आगे की चर्चा के भाग के रूप में हम इस संभावित कारण पर गहराई से विचार करेंगे कि क्यों यह विशेष विशेषता चारों पैरों पर उछलने की क्षमता इन कीड़ों को खाने के लिए स्वच्छ बनाती है। ठीक है, आश्चर्य के लिए तैयार हैं? यह कोशेर खाद्य पदार्थों के संबंध में शास्त्रों की आज्ञाओं का लगभग समापन करता है। ओ, हम इस अध्याय के बाहर समय समय पर एक विवरण जोड़ेंगे, लेकिन ये 23 पद काफी हद तक यही है। व्यवस्था विवरण 14 कमोबेश वही दोहराता है जो हमने अभी पढ़ा है। मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहूदी धर्म ने इन कुछ शास्त्रों के नियमों को आहार नियमों और विनियमों की एक विशाल मानव निर्मित प्रणाली में विकसित किया है, जिसमें अनुष्ठानिक हाथ धोना और गैर यहूदियों की उपस्थिति में खाने पर प्रतिबंध शामिल है जो आपके भोजन को छू सकते हैं और इसीलिए इसे अशुद्ध कर सकते हैं। बाद में अध्याय 11 के अंत में हम जिस पर चर्चा करेंगे उसके हिस्से के रूप में हम यीशु की प्रसिद्ध कहानी में जाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपके मुंह में जो जाता है वह आपको अशुद्ध नहीं करता है, बल्कि जो आपके मुंह से निकलता है वह आपको अशुद्ध बनाता है। कुछ और हफ्तों में हम यह समझने में बेहतर ढंग से सक्षम हो जाएंगे कि यीशु किस मुद्दे से निपट रहे थे, और मैं यह कहकर इसका पूर्वावलोकन करूंगा कि यहूदी धार्मिक नेतृत्व के साथ उनकी बहस की अधिकांश चीजों की तरह। यह मानव निर्मित परंपराओं के प्रति उनकी घृणा के इर्द गिर्द घूमती थी। वे चीजें जो यहूदी धर्म के सिद्धांत बन गए थे, पवित्र शास्त्र नहीं। पद 24 उस अवधारणा को सामने लाता है जिस पर हमने पिछले पाठ में चर्चा की थी कि अशुद्ध वस्तुएं केवल संपर्क से ही स्वच्छ वस्तु को प्रदूषित कर देती हैं। आपको याद दिलाने के लिए धारणा यह है कि जब कोई अशुद्ध वस्तु किसी स्वच्छ वस्तु को छूती है, अर्थात साधारण शारीरिक संपर्क, तो स्वच्छ वस्तु का ह्रास होता है और वह अशुद्ध हो जाती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि स्वच्छ वस्तु किसी अशुद्ध वस्तु को छूती है, वह शुद्धता अशुद्ध वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है, जिससे अशुद्ध वस्तु स्वच्छ हो जाती है। स्वच्छ वस्तु के अशुद्ध वस्तु से संपर्क करने का एकमात्र परिणाम यह होता है कि दोनों वस्तुएं अशुद्ध हो जाती हैं। यह एक तरफा रास्ता है। इसलिए पद 24 से शुरू होकर हमें अशुद्ध चीजों की एक सूची मिलती है। अगर कोई इनमें से किसी के संपर्क में आता है तो वह अनुष्ठान के अनुसार अशुद्ध हो जाएगा। और यहां मूल रूप से तीन तरह के संपर्क की चर्चा की गई है। छूना, ले जाना और रखना। रखना का मतलब कटोरे और बर्तन जैसे पात्र से है। अतः यहां से लेकर पद 40 तक हम इस बात पर विचार करेंगे कि अशुद्धता एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कैसे स्थानांतरित होती है। मूलतः नियम यह है कि जो कोई भी कुछ श्रेणियों के मृत पशुओं के शव को छुएगा, उसे अशुद्ध माना जाएगा, लेकिन केवल बहुत ही सीमित तरीके से। वे उस दिन सूर्यास्त तक अशुद्ध रहते हैं। सूर्यास्त समय सीमा क्यों है? क्योंकि सूर्यास्त वर्तमान दिन को समाप्त करता है और एक नया दिन शुरू करता है। याद रखें, इब्रानी दिन सूर्यास्त से शुरू होता है और समाप्त होता है। नियम का एक और हिस्सा यह है कि जो कोई भी निषिद्ध मृत जानवरों में से किसी एक का शव ले जाता है, वह भी सूर्यास्त तक अशुद्ध रहता है। साथ ही यह अतिरिक्त आवश्यकता है कि उन्हें अपने कपड़े धोने चाहिए। स्वच्छ और अशुद्ध जानवरों की सूची कोशेर खाने पर लागू होने वाली सूची के समान ही है। बिना कटे खुर वाले जानवर और जो जानवर जुगाली नहीं करते हैं, वे मृत होने पर अशुद्ध हैं। लेकिन अब एक नई श्रेणी पर भी चर्चा की गई है, ऐसे जानवर जिनके पंजे हैं, जैसे बिल्लियों या कुत्ते। इन्हें अशुद्ध माना जाता है खाने के लिए बेशक, और अगर वे मर चुके हैं तो छूने के लिए भी। एक बार फिर, इनमें से किसी एक को छूना ठीक है अगर वे जीवित हैं, और इसका परिणाम वैसा ही होता है जैसे कोई ऐसे मृत पशु को छू ले जिसके खुर फटे ना हो या जो जुगाली न करता हो। किसी अशुद्ध मृत वस्तु के संदूषण के बारे में एक दिलचस्प बात पर ध्यान दें। यह केवल किसी व्यक्ति, किसी जीवित मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। इसकी अशुद्धता कपड़ों जैसी निर्जीव वस्तुओं तक भी पहुंच सकती है। पद 29 में जीवित प्राणियों की एक अलग श्रेणी से अशुद्धता के संचरण पर चर्चा की गई है, जिन्हें झुंड के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसे जानवर जो बेतरतीब ढंग से इधर उधर भागते हैं, और इस सूची में चूहे, छिपकलियां, यहां तक कि मगरमच्छ और संभवतः मगरमच्छ भी शामिल हैं। आप उन सभी को अशुद्ध चीजों की सूची में जोड़ सकते हैं जिन्हें उनके मरने के बाद छुआ नहीं जा सकता। अशुद्ध मृत चीजों की पिछली सूची की तरह ही जो कोई भी व्यक्ति किसी को छूता है, वह नए दिन की शुरुआत तक अशुद्धता का शिकार होता है, जो शाम के अंत में होता है। कृपया ध्यान दें कि हमें सिखाया जा रहा है कि मृत्यु सामान्य रूप से अशुद्ध है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मृत्यु असामान्य है, हमें मरना नहीं चाहिए। चूहे, पक्षी, मछली मरना नहीं चाहिए। मृत्यु एक ऐसी स्थिति है जो दुनिया के निर्माण के समय मौजूद नहीं थी। दुनिया पाप से प्रदूषित हो गई और फिर चीजें असामान्य हो गई। असामान्यता यहोवा के लिए घृणित है। मृत्यु सबसे असामान्य स्थिति है जो मौजूद है। अध्याय 11 के अंत में जब हम शुद्धता और पवित्रता के विषय में अधिक चर्चा करेंगे, तो हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि क्या सामान्य है और क्या असामान्य, तथा इसका यहोवा द्वारा शुद्ध और अशुद्ध घोषित किए गए बातों से कितना संबंध है। पद 32 से शुरू होकर अशुद्धता से संबंधित एक और पहलू बताया गया है। यह है कि जिस किसी चीज पर अशुद्ध मृत प्राणी गिरता है, वह अशुद्ध हो जाता है। वास्तव में अंग्रेजी अनुवाद इस वाक्य के वास्तविक इब्रानी अर्थ को अस्पष्ट करता है। यह कहता है कि जिस किसी चीज पर अशुद्ध मृत प्राणी गिरता है वह अशुद्ध हो जाता है, और जिस किसी चीज में अशुद्ध मृत प्राणी गिरता है वह अशुद्ध हो जाता है। इसलिए यदि कोई चूहा मर जाता है और आपकी चप्पल के ऊपर गिर जाता है तो यह एक स्थिति है, और यदि कोई चूहा मर जाता है और पानी के बर्तन या खाना पकाने के बर्तन में गिर जाता है तो यह दूसरी स्थिति है। बेशक एक का संबंध कम गंभीर प्रकार की अशुद्धता से है जो कपड़ों से संबंधित है, और दूसरा अधिक गंभीर प्रकार की अशुद्धता से संबंधित है क्योंकि यह भोजन की तैयारी से संबंधित है। अब जबकि यह बताया जा चुका है कि चीजें कैसे अशुद्ध हो जाती हैं, तो अब अगला काम इस बात पर चर्चा करना है कि इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए। हम अगले सप्ताह इस पर चर्चा करेंगे।